हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। युग और कृषा के केस की पहली हियरिंग खत्म हो चुकी थी। आदित्य सिन्हानिया से मिलने के बहाने युग उनके पास आया और उन्हें चौथे पड़ाव पर जाने की बात कही। युग ने ये इशारे में कहा था, लेकिन आदित्य सिन्हानिया सब समझ गए। युग उनसे अलग होकर कृषा के साथ बाहर जाने लगा, जबकि वो हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। आदित्य सिन्हानिया ने अमृता की तरफ देखा और धीरे से कहा, मुझे चौथे पड़ाव की सिक्योरिटी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। ब्रेड को बोलो उससे नहीं हो रहा है तो किसी और को हायर कर ले। मैं अब अपने चौथे पड़ाव को नहीं खोना चाहता हूँ। बोलते हुए उनकी आवाज़ काफ़ी सख्त थी। अमृता ने उनकी तरफ देखा और जवाब में कहा, आप खामखा ज़्यादा सोच रहे हैं, वो इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेगा। ऊपर से ये कोर्ट केस भी चल रहा है और फोर्थ स्टेप इतना आसान नहीं है कि वो कभी भी मुंह उठाकर वहां चला जाए। अमृता ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन आदित्य सिन्हानिया किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। वो पहले ही अपने तीन पड़ावों को खो चुके थे। आदित्य ने ना में सिर हिलाया और कहा, उसने ये बात मेरे कान में आकर कही है कि वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाला है। तुम उसे कम मत समझो, वो डेविल है, वो सच का डेविल है और किसी को नहीं बख्शने वाला। ठीक है, मैं खुद जाकर ब्रेड से बात कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। चौथे पड़ाव की सिक्योरिटी को तोड़ पाना इतना आसान नहीं है, अमृता ने जवाब दिया और फिर वो दोनों वहां से निकल गए। आदित्य सिन्हानिया और अमृता के जाने के बाद अर्जुन और रूहान भी अपनी गाड़ी में चले गए। वहीं युग कृषा को लेकर अपने घर आ चुका था। उसकी बाकी फैमिली राणा मेंशन चली गई थी। अपने विला में आते ही युग ने कृषा से कहा, तुमने सब कुछ काफी स्मार्टली हैंडल किया, मुझे लगा तुम घबरा जाओगी। तुम वहां मेरे साथ थे तो घबराने का सवाल ही पैदा नहीं होता, कृषा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। युग से बात करते हुए अचानक उसकी आंखों के सामने रूहान खुराना का चेहरा घूम गया। कृषा ने युग की तरफ देखकर सीरियस टोन में कहा, मैंने आज रूहान खुराना को गौर से देखा था, मुझे वो अच्छा नहीं लगा, मुझे उसके पास नहीं जाना, तुम्हारे साथ ही रहना है। कृषा की बातें सुनकर युग के चेहरे के भाव सर्द होने लगे। वो उसी लहजे में बोला, व्हाट डू यू मीन, तुम्हें वो अच्छा नहीं लगा? अगर तुम्हें अच्छा लग जाता तो तुम क्या उसके साथ चली जाती? वैसे भी मेरे जैसा लड़का तुम्हें इस पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। अरे तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे रूहान खुराना के पास नहीं जाना, कृषा ने अपनी सफाई देते हुए कहा। युग ने कृषा को कमर से कसकर पकड़ा और अपने करीब करते हुए कहा, आज के बाद तुम्हारी जुबान पर मेरे अलावा किसी और का नाम नहीं होना चाहिए। मैंने जानबूझकर इस केस को अगली हियरिंग तक खींचा है। नेक्स्ट हियरिंग में केस खींचने का काम तुम्हारा होगा। मुझे इस केस के खत्म होने से पहले माफिया किंग बनना है और फिर आदित्य सिन्हानिया को अच्छे से जवाब देना है। इस बार युग कृषा को प्यार से नहीं बल्कि गुस्से में सब बता रहा था। गुस्से में युग की उंगलियां कृषा की कमर पर कसती जा रही थीं। कृषा ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया और फिर धीरे से कहा, युग मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज थोड़ा धीरे से पकड़ लो। तुम्हें मेरी हरकतों से दर्द होता है कृष, और मुझे तुम्हारी बातों से। तुम उस रूहान खुराना के पास जाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? मैंने तुम्हें पाने के लिए इतनी मेहनत की है, उसका क्या? युग ने गुस्से में जवाब दिया और फिर कृषा को एक झटके में छोड़ दिया। वो वहां से जाने लगा, तभी कृषा दौड़कर उसके पीछे गई और युग का हाथ पकड़कर कहा, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करो। आई प्रॉमिस आगे से मैं उसका नाम नहीं लूंगी और उसके बारे में सोचूंगी भी नहीं, प्लीज इस बार के लिए माफ कर दो। कृषा युग को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, इसलिए वो तुरंत उसके गले लग गई। युग के हाथ अभी भी नीचे थे। उसने बिना किसी भाव के कहा, एक बात हमेशा याद रखना कृष, मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हें किसी और के करीब जाने का हक नहीं है। युग ने कृषा को खुद से अलग किया और फिर वहां से चला गया। युग के नाराज होने पर कृषा का मूड ऑफ हो गया था। उसकी कोशिश करने के बावजूद युग का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। कृषा ने परेशानी में अपने सिर पर हल्का सा मारते हुए कहा, मैं भी ना बिल्कुल बेवकूफ हूँ, कुछ समझ नहीं आता कहाँ क्या बोलना चाहिए। यहाँ युग मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है और मैं हूँ कि रूहान खुराना के बारे में सोच रही हूँ, पर वो नाम मेरे मन में अचानक से स्टक कर गया। इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसे पहले से जानती हूँ, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? कृषा रूहान के बारे में सोचने की कोशिश कर रही थी। वहीं रूहान इस वक्त अर्जुन के साथ था। दोनों गाड़ी में थे और सिन्हानिया मेंशन जा रहे थे। कभी ना कभी तो उसे सच का पता लगना ही है, तुम उसे पहले क्यों नहीं बता देते? रूहान ने परेशान चेहरे के साथ कहा। अर्जुन गाड़ी ड्राइव कर रहा था। रूहान की बात सुनने के बाद उसने आइज रोल करके कहा, बताने से कौन सा सच बदल जाएगा रूहान? तुम खुद मुझे ये बात अब बता रहे हो कि तुम सीक्रेटली कृषा को प्रोटेक्ट करते थे और उससे पहले भी मिल चुके हो। दुआ करो कि कृषा को कुछ याद ना आए। लेकिन मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, उसके पीछे एक लड़का था, उसे ही समझा बुझाकर उसके पीछे जाने से रोका था। इस चक्कर में हम पहले टकरा गए तो क्या हुआ? वैसे भी मैं उसके हस्बैंड की तरह नहीं हूँ जो उस आदमी को मारकर अपने रास्ते से हटाऊं। मैंने उसे काफी अच्छे तरीके से समझाया था। रूहान ने अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश की। उसकी बातें सुनकर अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, और बाद में उस लड़के की बहुत बुरी तरह से मौत हुई थी। देखो रूहान, जो भी हुआ उसके बारे में कृषा को ना पता चले तभी अच्छा है। वरना वो यही समझेगी कि तुम में और युगराना में कोई फर्क नहीं है। अब मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, तो अपना मुंह बंद रखो। रूहान ने उसकी बात पर हामी भरी और आगे कुछ नहीं कहा। उसका ध्यान गाड़ी से बाहर की तरफ था और मन में काफी सारे ख्याल चल रहे थे। मैं इतनी आसानी से अपना सच उसके आगे नहीं आने दूंगा। हाँ, मैंने मारा था उस लड़के को, और एक दिन युगराना को भी मारूंगा। मैं उसे मारूं या ना मारूं, लेकिन कृषा को उससे छीन कर रहूंगा। सोचते वक्त रूहान के चेहरे के एक्सप्रेशन सर्द होने लगे। अब उसके चेहरे पर गुस्से के बजाय नफरत थी। रूहान और अर्जुन सिंघानिया घर जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ योग कृषा से बात करने के बाद उससे नाराज हो गया था। कृषा को वहीं पर छोड़कर योग ऊपर मीटिंग रूम वाले कमरे में पहुंचा और उसके साथ में मलिक भी मौजूद था। योग के वहां आते ही मलिक ने कहा, किस्मत से हमें एक हफ्ता और मिल गया है और हम आराम से ऑस्ट्रेलिया जाकर वापस भी आ सकते हैं। अपने आगे का प्लान बनाया? योग ने उसकी बात पर हामी भरी और आगे कहा, हाँ मलिक, लेकिन किस्मत से नहीं, प्लानिंग से कहो। युगराना किस्मत में यकीन नहीं करता। मैंने आगे का प्लान बना लिया है, मैप मेरे पास में है और हम ऑस्ट्रेलिया नहीं स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। योग की बातों ने एक बार फिर से मलिक को चौंका दिया था। वो पहले तो केस पर ठीक से ध्यान नहीं दे रहा था और फिर उसका ध्यान अचानक ही ऑस्ट्रेलिया जाने पर था। फिर प्लान बदलते हुए योग ऑस्ट्रेलिया के बजाय स्विट्जरलैंड जाने के बारे में सोच रहा था। मलिक ने हैरानी से सिर हिलाया और पूछा, स्विट्जरलैंड? लेकिन वहां पर तो पांचवा पड़ाव है, हम पहले ही वहां कैसे जा सकते हैं? और हम पहले वहां क्यों नहीं जा सकते? कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि सारे पड़ावों को सीक्वेंस से ही पार करना है? ऐसा कहीं नहीं लिखा, और हम पहले किसी भी पड़ाव में जा सकते हैं, युग ने बिना किसी भाव के कहा। मलिक समझ गया था कि युग के दिमाग में क्या चल रहा था।
मलिक कुछ कहता उससे पहले युग खुद ही बोल पड़ा, हम पहले पांचवा पड़ाव पार करेंगे। मैंने आदित्य सिंघानिया और उसकी टीम का ध्यान भटका दिया है। चिंता मत करो, उनका सारा ध्यान चौथे पड़ाव पर अटका रहेगा और हम पांचवा पड़ाव को पार करके वहां से निकल भी लेंगे। ठीक है, फिर मैं पांचवें पड़ाव के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करके रात तक मिलता हूँ, मलिक ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर युग छट से बोला, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था, तो फिर इसके बारे में भी सारी जानकारी पता लगा ली थी। बोलते हुए युग ने मैप खोला और फिर एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जो पिछले 20 सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन ही दिखाई गई है। नीचे की फ्लोर का काम चल रहा है जबकि ऊपर का फ्लोर कंप्लीट हो चुका है और वहां कुछ किराएदार रहते हैं। हमें ऊपर के लोगों से कोई मतलब नहीं होगा, हमें बस बेसमेंट से जाकर वो एसेट निकालना है। इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी कुछ खास नहीं है क्योंकि यहाँ पर लोग रहते हैं और ये जगह ऐसी है कि आसानी से किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। यहाँ भी वही फालतू सीसीटीवी कैमराज और बाकी की सिक्योरिटी लगी हुई है जिसे हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। बेसमेंट को खोलने के लिए हमें क्रिश के फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन लगेंगे, जो हम कर लेंगे। यहाँ का प्लस पॉइंट ये है कि हमें बस सिक्योरिटी चेंज ही करनी है, बाकी यहाँ मिलने वाली एसेट यहीं पर पड़ी रहेगी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। युग ने एक झटके में मलिक को सब कुछ बता दिया था। उसे भी हैरानी हो रही थी कि युग ने इतनी इन्फॉर्मेशन आखिर कब और कैसे इकट्ठा की। मलिक बस उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाए जा रहा था। पूरी बात डिसाइड हो जाने के बाद युग ने मलिक से कहा, दो दिन बाद हम स्विट्जरलैंड जाएंगे, लेकिन तुम हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया का टिकट बुक करना होगा। हम ऑस्ट्रेलिया से स्विट्जरलैंड जाएंगे, ना कि इंडिया से डायरेक्ट। आदित्य सिंघानिया और उसके आदमियों को यही लगना चाहिए कि हम ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। एक और बात, हम प्राइवेट जेट से नहीं बल्कि नॉर्मल फ्लाइट लेंगे, बिजनेस क्लास टिकट बुक कर लेना। मलिक ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर वहां से चला गया। मलिक के जाते ही युग ने कुछ पल नक्शे को देखा और फिर वो भी वहां से अपने रूम में आ गया। युग जब अपने रूम में आया तब वहां अंधेरा था। जैसे ही युग ने लाइट्स ऑन की, उसने देखा कृषा ने सारा रूम फूलों और कैंडल से डेकोरेट कर रखा था। ये कृष भीना पता नहीं क्या उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है, युग ने आइज रोल करके कहा और फिर आगे बढ़ने लगा। युग ने कुछ कदम ही आगे बढ़ाए होंगे कि तभी कृषा ने पीछे से आकर उसे हक किया। कृषा ने अपना सिर युग की पीठ पर रखा, उसके हाथ युग की कमर पर लिपटे थे और फिर उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें प्रॉमिस कर तो दिया कि आगे से कोई गलती नहीं करूंगी, अब हर बात पर गुस्सा होना जरूरी है क्या? मैं तुम्हारी तरह परफेक्ट नहीं हूं, पर तुम भी अच्छे से जानते हो कि मैं लॉयल हूं और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं। आज मेरे पास मौका था, फिर भी मैंने तुम्हारा साथ दिया। तुम्हें अब तक समझ आ जाना चाहिए कि मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। युग को मनाने के लिए कृषा ने एक लंबा चौड़ा भाषण दे दिया था। युग ने कृषा का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने सामने कर लिया। युग और कृषा के सिर आपस में जुड़े हुए थे। तब युग ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं तुम लॉयल हो और मुझसे प्यार भी करती हो, पर फिर भी मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम किसी और का नाम अपने होठों पर लेकर आओ। उस जैसे घटिया इंसान का तो बिल्कुल नहीं जो तुम्हें पाने की ख्वाहिश भी रखता है। तुम सिर्फ मेरी हो और कोई तुम्हें नजर भर के देखे वो भी मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। कृषा युग की आवाज से महसूस किया कि वो रूहान के बारे में बात करते वक्त और भी गुस्सा हो रहा था। युग को शांत करने के लिए कृषा ने अपने होठ उसके होठों पर रखे और काफी सॉफ्टली किस कर रही थी, लेकिन युग इस वक्त गुस्से में था। वो कृषा के साथ सॉफ्ट होने के बजाय काफी रफ हो रहा था। उसे किस करते टाइम युग के हाथ कृषा के टॉप के अंदर उसकी बॉडी पर चल रहे थे। कृषा युग को रोकना चाहती थी, लेकिन साथ ही वो ये भी जानती थी कि इस मूवमेंट पर उसने युग को रोका तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। किस करते हुए युग ने कृषा को बेड पर गिराया और अगले ही पल वो उसके ऊपर था। कृषा को किस करते हुए युग काफी रफ हो रहा था। उसने कुछ ही देर में उसके सारे कपड़े निकालकर फेंक दिए थे और अब वो उसकी बॉडी पर अपना गुस्सा उतार रहा था। कमरे में कृषा की दर्द भरी सिसकियां गूंज रही थीं, फिर भी युग उसके साथ काफी रफ था।